मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसाराणा, ओ हंसाराणा। तू चुगले रे चुगले राज योग का मोती।
ओम शांति। सभी ने कहा ओम शांति। राजयोग से संबंधित आप 3 सत्र सुन चुके हैं और मैं समझती हूँ राजयोग क्या है वह अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कुछ अभ्यास भी किया। अब और आगे हम बढ़ेंगे। कल के 3 विषयों को अगर हम सार रूप में समझें तो योग अर्थात संबंध, जोड़, मिलन, और राजयोग अर्थात उस सर्वोच्च सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सर्व आत्माओं के परम पिता परम आत्मा से आत्मा का संबंध, जो इतना श्रेष्ठ योग है परंतु उसकी विधि भी उतनी ही सरल और श्रेष्ठ है। मन के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। दुनिया में आप देखते हैं कई प्रकार के जो मिलन का अनुभव करते हैं उसमें कोई न कोई प्रकार की ऊर्जा काम करती है। हम भी एक मिलन का ही अनुभव कर रहे हैं। आप मेरे बोल सुन रहे हैं, ये ध्वनि की ऊर्जा है, आवाज़ की ऊर्जा है। देख रहे हैं तो बिजली है, प्रकाश की ऊर्जा है। तो ये भी एक मिलन, ये ऊर्जा के कारण अनुभव हो रहा है। अंधेरा हो जाए सब तो कुछ एक दो को देख न सके, न माइक चले, न हम बोल पाएंगे, आप सुन भी नहीं पाएंगे। तो ये जो सुंदर मिलन का अनुभव हो रहा है उसमें बिजली काम कर रही है और मन भी काम कर रहा है, क्योंकि आप मन से सुन रहे हैं, केवल कानों से नहीं सुन रहे हैं। और हम भी मुख से बोल रहे हैं लेकिन मन से, दिल से, भावनाओं से, उस प्रेम से, ये सब इसमें बातें आती है। तो मिलन का अनुभव हम करते हैं। एक व्यक्ति 1000 मील की दूरी पर हो लेकिन मन से मिलन कर सकता है। कई बार होता है ना, हमको खांसी आती है, छींक आती है, तो लोग कहते हैं तुमको कोई याद कर रहा होगा, है ना, इसीलिए छींक आ रही है, हिचकी आती है, या कुछ भी लगता है जैसे कोई याद कर रहा है। तो मन से मन का भी मिलन होता है। मन भी एक ऊर्जा है जो मिलन का अनुभव कराती है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए ऊर्जा जो काम करती वो मन ही है। इसीलिए भगवान के ही महावाक्य हैं, इस मन को मेरे में लगाओ। पर मन क्या चीज है उसको भी कल समझा। मन आत्मा के सोचने की शक्ति है। अब इस सोच शक्ति को हम इतना शुद्ध बनाते हैं जो सहज ही मन ईश्वर में लग जाता है, मन का शुद्धिकरण हो जाता है। क्योंकि मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत मन होगा तो ईश्वर की स्मृति नहीं आएगी। ईश्वर की स्मृति तो एक शुद्ध पवित्र दूध की तरह है। वैसे भी कहावत है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, एक कहावत है। अब क्यों ये कहावत प्रसिद्ध हुई, कौन शेरनी का दूध निकालने गया होगा जो उसमें सोने का बर्तन चाहिए और बर्तन शायद उसमें फट जाता होगा। तो इसका भाव यही है कि जैसी चीज़ वैसा पात्र। शेरनी का दूध तो बहुत भारी होगा ना, तभी तो शेर इतना मजबूत होता है, उसका जो बच्चा होगा वो भी तो माँ का ही दूध पीता है। तो परमात्मा की याद किस मन रूपी पात्र में टिकेगी, जितना ही शुद्ध होगा। तो राजयोग में सबसे पहले मन का शुद्धिकरण करना आवश्यक है। परिचय मिला, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है, कैसे परमात्मा की महिमा स्तुति गाकर उसमें हम खो जाएं, ये पहले समझ मिली। अब उस समझ के आधार पर हम अभ्यास करना आरंभ करते हैं। तो इसकी विधि क्या हो गई, अगर विधि को हम समझें तो कल जैसे बताया कि आत्मा और परमात्मा में जो समानता है वो चिंतन करने से मिलन का अनुभव होगा। अब तक जो हम मिलन का अनुभव चाहते थे, मन लगाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन समानता का तो अनुभव था ही नहीं। यही सोचते थे परमात्मा तो बहुत परम शक्ति, बहुत ऊंची, और मैं तो बहुत नीच हूँ, वो तो बहुत पावन है, मैं तो पतित हूँ, वो तो नाम रूप से न्यारा, निराकार, निरंजन, निर्गुण, यानी जैसे कुछ है ही नहीं, और मैं तो ये सब कुछ हूँ। इसीलिए मन कहाँ लग सका ईश्वर में, और देह अभिमान के कारण ये देह से संबंधित जो बातें थी उसी में मन चला जाता था। तो इसीलिए इसकी सही विधि समझी कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति, ये राजयोग है, जिसमें आत्मिक स्थिति चाहिए, क्योंकि आत्मा का ही संबंध परमात्मा के साथ है, देह का नहीं है। तो आत्मिक स्थिति चाहिए, फिर परमात्मा की यथार्थ स्मृति चाहिए। यथार्थ स्मृति किसको कहेंगे, पहले यथार्थ पहचान चाहिए कि ईश्वर है कौन, क्या संबंध है मेरा उनके साथ, मैं कैसे उनसे मिल सकता हूँ, मुझे क्या प्राप्ति करनी है उनसे। जब तक ये सारी समझ नहीं होंगी तब तक वो स्मृति भी यथार्थ नहीं कहलाई जाएगी। और स्मृति शब्द को अगर और सरल अर्थ दें तो स्मृति का शब्द अर्थ होता है याद, और याद ये करना ये मन का काम है। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कई प्रकार की यादें हैं, कई प्रकार की यादें, क्यों ऐसे कहना पड़ता है, याद तो याद ही होती है, लेकिन कई प्रकार की यादें कैसे। एक याद वो होती है जो हम करते हैं, दूसरी याद वो होती है जो अपने आप आती है, हमारी भाषा बदल जाती है। किसके लिए कहेंगे, आज मैंने आपको बहुत याद किया, और किसके लिए कहेंगे, उसकी मुझे बड़ी याद आ रही है। तो याद करना और याद आना दोनों में अंतर है या एक ही बात है, अंतर है या एक ही बात है, अंतर है। क्या अंतर है, याद करते किसको हैं, जिससे कोई मतलब है, उसमें कोई मेरा स्वार्थ है। जैसे हम किसी को याद करते हैं, मान लो बातें कर रहे हैं उसकी, और अचानक वो पहुंच जाता है, और मैं कहूँगी अरे अरे अच्छा हुआ आप पहुँच गए, अभी हम आपको कितना याद कर रहे थे, आप पहुँच गए, अच्छा हुआ। तो सबसे पहला रिएक्शन, प्रतिक्रिया क्या होगी, वो पूछेगा क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था, क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था, क्योंकि ऐसे क्यों याद करेंगे, कुछ काम होगा ना, तभी तो याद कर रहे थे। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये काम था और मुझे ऐसे लगा आप ही ये कर सकते हो, इसीलिए हमने आपको याद किया। तो एक याद होती जब करते हैं उसमें स्वार्थ भरा होता है, दूसरी याद होती है जो अपने आप आती है उसमें स्नेह भरा होता है, स्वार्थ नहीं है, स्नेह है। चाहे वो ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो अभी जीवित भी नहीं है, लेकिन हम उसको बड़े स्नेह से वो याद नहीं करते, उसकी याद अपने आप आती है। अभी उनसे कुछ मिलना भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, लेकिन उनके कोई ऐसे विशेष गुण हमारे मन पर छाप कर चुके हैं, छप गए हैं, तो जैसे उसकी याद अपने आप आती कि वो व्यक्ति कितना अच्छा था, क्या उसमें विशेषताएं थी, कैसे उसकी वाणी होती थी, कितना उनका सबसे प्यार था, उनकी विशेषताएं हम गिनते रहेंगे और उसकी याद अपने आप आती रहेगी, मेहनत नहीं करते, कोई स्वार्थ भी नहीं है। अभी तो याद आ रही है, आज मुझे उसकी बड़ी याद आ रही थी, वो उसमें स्नेह समाया होता है। पर तीसरी प्रकार की भी एक याद है, किसके लिए हम ये भी कहते हैं कि मुझे उसकी याद बहुत सता रही है, सताती भी है याद। क्यों सताती है? क्योंकि उनके साथ ऐसा गहरा संबंध था, लेकिन अब वो दुनिया से चला गया, वापस आना नहीं है। वो संबंध हम भूल नहीं पाते हैं, पति पत्नी का संबंध है, बाप बेटे का संबंध, इतना नज़दीक रिश्ता होता है। पर अब वो संसार से चला गया मान लो, और कदम कदम पर उसकी याद हमें सताती रहती है। हम सोचते हैं अगर वो होता तो कितना अच्छा होता, इतना मानो वो संबंध खींचता है। जानते भी हैं कि वापस नहीं आना है, फिर भी वो याद सताती है, भूलना भी चाहते हैं, समझते हैं याद करने से कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, वापस तो आएगा नहीं। लोग भी कहेंगे भाई भूल जाओ, मत याद करो, मत याद, क्योंकि दुख होता है याद करते हैं। पर वो याद करते नहीं है, वो सताती है याद, भूल नहीं पाते हैं। अब ये इसमें संबंध घनिष्ठ होता है, परंतु हम देखते हैं ये तीनों प्रकार की यादें जो आती है, करते हैं, सताती है, ये अंत में दुख ही देती है। आप थोड़ा इसकी गहराई में जाएंगे, क्योंकि जिसको आप करते हो मान लो आपका उसमें स्वार्थ है। अब आपने तो कहा आपको याद किया क्योंकि आप ऐसे मदद कर सकते हो, अब वो सुनेगा लेकिन कहेगा माफ़ करना, मैं तो नहीं कर सकता मदद क्योंकि ये मेरे वश की बात नहीं है। अब उसने साफ मना कर दिया, अब बताइए उस याद से सुख मिला या दुख? हाँ, क्या मिला? दुख ही मिलेगा। अच्छा मान लीजिए किसी की याद आई और आपने उसके गुणों का वर्णन किया किसी को, लेकिन आपके आपको तो उससे स्नेह है, पर जिसके साथ आपने वर्णन किया उसको शायद इतना उनसे स्नेह नहीं है। वो कहेगा अच्छा आप इतनी उसको आपको उसकी याद आती है, पर वो व्यक्ति तो ऐसा ही था, वो कोई आप जैसे कहते हो वैसे था नहीं। तो जैसे आप उसका कोई अवगुण या कोई कमी या कमज़ोरी ऐसी बात सुनेंगे तो आपके मन को जैसे घात होगा, अरे मैं तो उसके लिए इतना अच्छा सोच रहा था और ये ऐसे है क्या। तो जैसे वो याद आई भी लेकिन फिर उसे दुख ही मिला, सुख नहीं मिला। और सताने वाली याद तो है ही दुखदाई, वो तो आप भूलना चाहते हो परंतु भूल नहीं पाते हो तो सताती रहती है, इसलिए सताना शब्द कहते हैं। सताना तो दुखदाई होता है। तो परमात्मा की याद कैसे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? क्योंकि ये तीनों ही यादें दुखदाई है, इसलिए परमात्मा की याद को हम चौथी प्रकार की याद कहते हैं, वो है समाने वाली याद। जो आपको कल भी बताया, आत्मा परमात्मा के गुणों में समा जाए, विलीन हो जाए, इसीलिए कहा कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, ये कह देते हैं। ये विलीनता की अवस्था कोई स्थूल अवस्था नहीं है, जैसे बूंद सागर में समा जाती है या बुदबुदा सागर में समा गया, एक पताशा पानी में गया और पिघल गया और उसमें समा गया, उस हिसाब से आत्मा परमात्मा के मिलन की भेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो न जल सकती न कट सकती न डूब सकती न सूख सकती, तो किस में मिल भी कैसे सकती, मिल गई तो अस्तित्व खत्म हो गया, उस हिसाब से तो खत्म हो गया, जैसे बूंद सागर में मिल गई तो अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, पर ये मन की स्थिति है जिसके आधार से हम मन से मिलन का अनुभव करते हैं, और इसीलिए कहा भाई एक हो गए, दोनों एक हो गए, दो बदन है पर एक आत्मा, दोनों का मिलन इतना इतना घनिष्ठ है जो वो दोनों अलग नहीं है एक दो से, दो तन भले हैं पर आत्मा एक है, ऐसे समझ लेते हैं, क्योंकि मिलन हो गया। वो अपने आप को खो देते हैं, जिसके साथ प्रीत होती है उसमें खो गए, इसीलिए कहने में भी आता है प्यार में खो गया, खो जाते हैं, खोना माना अपने अस्तित्व को भुला देना। पर आत्मा का अस्तित्व तो कभी नष्ट होता ही नहीं है, परमात्मा भी तो एक आत्मा है, तो स्थूल रूप में कोई उस रूप से मिलन नहीं है जो पानी पानी में मिल जाए या आग आग में मिल जाए, उस रूप से तो नहीं है। तो जब ये बात हमें समझ में आती है तो इसका भावनात्मक स्वरूप लेते हैं कि शिव बाबा के गुणों में हम ऐसे खो जाएं, जो हम वो गुण का स्वरूप बन जाएं, कोई अंतर न महसूस हो। लेकिन उसके लिए कुछ पुरुषार्थ है, इसकी कुछ अलग अलग स्टेजेस है, जो अनेक पड़ाव है, लेकिन उन पड़ावों को समझने से पूर्व हम पहले ये देखें कि इस राज्यों की मंजिल क्या है। हम इसे क्यों कहते हैं, ये एक यात्रा है, इसे आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। जाना कहीं नहीं है, यात्रा पर तो जाते हैं ना शरीर के साथ, अब बैठे एक ही जगह है, कहीं जा नहीं रहे हैं, पैर नहीं चल रहे हैं, हाथों से काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम यात्रा पर हैं। तो आत्मा यात्री है, और राजयोग यह ज्ञान मार्ग है, ये पथ है, इस पथ पर आत्मा रूपी यात्री यात्रा कर रही है। अब मंजिल क्या है, तो आप कहेंगे परमात्मा से मिलना ये मंजिल है। हम कहते हैं ये मंजिल तात्कालीन अवश्य है, क्योंकि राजयोग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो ये तात्कालीन लक्ष्य ज़रूर है कि मुझ आत्मा को परमात्मा से मिलन का अनुभव करना है। लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, जैसे किसी को अमरनाथ पहुंचना है तो अमरनाथ तो पहले से ही उनके मन में रहता ही है, जैसे आप लोग माउंट आबू आए लेकिन एक महीने से ही आपका माउंट आबू से मिलन था ही, कैसे, जब से आपकी टिकट निकली होगी आपने निश्चित किया होगा कि हमें इन तारीखों में माउंट आबू जाना है, तो आपका मिलन तो माउंट आबू से था ही, कैसे, जब भी कोई आपसे मिलता होता और ये तारीखें बताता होता 15 से 20 या 14 से 20, आप कहते माफ़ करना उन दिनों में मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मैं माउंट आबू में होऊंगा, इन दिनों में मैं मिल नहीं सकूंगा आपसे, लेकिन जब माउंट आबू से वापस आऊंगा फिर मिलूंगा। तो कितने दिन पहले से मन से तो यहीं थे कि नहीं थे, उसके पहले तो आप आबू को जानते भी नहीं होंगे, आपके पास बहने आई होगी और आपको कहा होगा कि आप आबू चलिए, आपने कहा होगा आबू ये कौन सा स्थान होता है, कहाँ होता है, कैसे जाना होता है, फिर बहनों ने बताया होगा ऐसे ट्रेन में जाते हैं इतना समय लगता है, ये प्रोग्राम है, तो आपने प्रोग्राम अपना बनाया होगा। तो जैसे निश्चित किया माउंट आबू से मिलन तो हो ही गया, आबू से मिलन हो ही गया। फिर आपने यात्रा आरंभ की। तो ये राजयोग में आत्मा का परमात्मा से संबंध या मिलन ये तो तात्कालीन लक्ष्य है, परमात्मा को तो साथी बना करके चलना है इस यात्रा में, ये नहीं कि अंत में जाकर के मिलेंगे। जैसे अमरनाथ में भले जाना है लेकिन रास्ते में कहेंगे अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय, है ना, नारे लगाते हुए यात्री पैदल करते रहते हैं, जाते रहते हैं, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। हाँ, तो काशी की याद पहुँचने से पहले ही आती है, तो पहुँच ही जाते हैं मन से। तो परमात्मा से मिलन तो ये तात्कालीन मिलन है। जैसे ही मैंने सोचा मैं एक आत्मा हूँ, मैं शिव परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम का वासी हूँ, शिव परमात्मा शांति का सागर है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मिलन का अनुभव हो गया उसी समय। लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है इस राजयोग का? दो लक्ष्य हमको शिव बाबा ने दिए। जैसे दो आँखें हैं ना, तो शिव बाबा कहते एक आँख में रखो मुक्ति। ये मेरा लक्ष्य है कि आत्मा को वापस अपने धाम जाना है, जिस धाम से इस सृष्टि रंग मंच पर आई थी, पाठ बजाने के लिए आई थी, उस धाम में आत्मा को वापस जाना है, या बैठ नहीं जाना है। मुक्ति की हम सब इच्छा करते हैं, तो आत्माओं का जो असली धाम है वो मुक्ति धाम है, पर मुक्ति धाम में ऐसे नहीं जा सकेंगे, आत्मा को शुद्ध होके ही जाना है, क्योंकि शुद्ध होके रूप में ही आत्मा आई थी, तो उसी शुद्ध रूप में ही आत्मा को वापस जाना है। अभी जो स्थिति है वो शुद्ध इतनी नहीं है, विकारों के का प्रभाव है मन में, नकारात्मक सोच है, कई सोच चलते रहते हैं, तो इतनी शुद्धि तो है नहीं, इसलिए महसूस करते हैं कि इतना शुद्ध तो मैं नहीं हूँ। परंतु मैं आत्मा तो शुद्ध थी, और फिर उसी शुद्ध स्वरूप में वापस जाना है, और कैसे शुद्ध बनेंगे ये राजयोग वो माध्यम है। इसीलिए परमात्मा के महावाक्य हैं, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। इस राजयोग से आत्मा का शुद्धिकरण होता है, आत्मा वापस अपने असली स्थिति तक पहुंच जाती है। राजयोग एक अग्नि के रूप में है, जैसे सोने में खाद पड़ी हो, परंतु अगर उसकी खाद निकालनी है, उसको शुद्ध करना है, तो क्या करते हैं, सोने को क्या करते हैं, आग में डालते हैं। आग में डालने से जो और तांबा या लोहा या चांदी या जो भी सोने में मिला हुआ है वो पिघल जाता है, पहले वो पिघलता जाता है, पिघल जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सोने से कम होता है, फिर वो पिघल जाता है, लास्ट में सोना बचता है, वो भारी होता है, वो नीचे चला जाएगा तो सब निकल जाता है, वो जो खाद पड़ी है शुद्धिकरण होता है। कोई बहुत कठोर चीज़ है उसको भी आग में डालते हैं वो नरम हो जाती है ना, बैंगन आलू टमाटर डालते हैं ना आग में, तो क्या होता है, वो कठोर होते हैं तो वो नरम हो जाते हैं आग में पड़ते ही। तो यानी परिवर्तन होता है, शुद्धिकरण होता है, एक परिवर्तन की प्रक्रिया आग में डालने से होती है। कोई नरम चीज़ डालेंगे वो कठोर हो जाती है, जैसे मिट्टी डालते हैं, मिट्टी की ईंट बनाते हैं, भट्ठे में डालते हैं, तो क्या होता है, मिट्टी जो है वो स्ट्रांग बन जाती है। ऐसे ही मिट्टी तो टूटेगी पर ईंट टूटेगी नहीं, क्योंकि वो आग में पकी है। अर्थात परिवर्तन होता है या शुद्धिकरण होता है। तो ये राजयोग आत्मा का शुद्धिकरण है, क्योंकि मैं आत्मा अपने असल स्वरूप में तो बहुत शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, परम धाम में आत्मा तो बिल्कुल एक बेदाग हीरे की तरह है, लेकिन जैसे ही सृष्टि मंच पर आए तो आदि में जब आए तो मानव तो देव रूप में था, नर नारायण स्वरूप था, नारी लक्ष्मी स्वरूपा थी, बहुत शुद्ध थे। तो आत्मा का अनादि स्वरूप भी शुद्ध है, आदि स्वरूप भी अति शुद्ध है। ये केवल अंत के समय थोड़ी जो अशुद्धि आ गई विकारों की, वो राजयोग से हम शुद्ध होते हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा, दो आँखें, एक आँख में रखो मुक्ति, वापस घर जाना है, पर दूसरी आँख में जीवन मुक्ति, जीवन में रहते भी मुक्ति का अनुभव करना है, शरीर में होते हुए भी शरीर के अभिमान से परे रहना है, अर्थात देह में होते हुए भी पवित्र रहना है। मन से पवित्र रहेंगे तब तो आत्मा का शुद्धिकरण होगा। अब वो शुद्धिकरण अर्थात जीवन मुक्ति, जीवन में रहते भी मुक्ति का अनुभव, संसार में रहो पर संसार आप में न रहे। इसीलिए कहा जाता है, जैसे नाव पानी पर है तो नाव तर जाएगी, लेकिन नाविक को ये ध्यान अवश्य रखना पड़ता है कि पानी नाव में ना आ जाए। नाव भले पानी पर हो तो तर जाएगी, पर पानी अगर नाव में आ गया तो डूब जाएगी। तो संसार रूपी सागर में अवश्य रहना है, जीवन रूपी नैया चल रही है, पर संसार सागर का जल इस जीवन की नैया में ना आ जाए, आत्मा फंसे नहीं, इसको कहेंगे जीवन मुक्ति। इसीलिए आप देखेंगे देवताओं को जीवन मुक्त कहते हैं, शरीर में है, साकार में है, संसार है, परिवार है, गृहस्थ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको जीवन मुक्त क्यों कहते हैं? कैसे जीवन मुक्त हैं? देवताओं के एक एक अंग को कमल से भेंट करते हैं, नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, हृदय कमल, कमल, तो कमल से क्यों भेंट करते हैं? कमल कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, तो देवताएं संसार में रहते हैं पर संसार उनमें नहीं रहता। तो ये मानव का ही सर्वोच्च जीवन है। एक तो एक लक्ष्य है मुक्ति, दूसरा है जीवन मुक्ति। अब ये दोनों लक्ष्य हमको राजयोग से प्राप्त होते हैं। हम सब घर जाएंगे जरूर। कई कहते हैं हम मुक्ति में चले जाएंगे फिर वापस क्यों आएंगे? हम कहते हैं क्यों नहीं आओ, मुक्ति से ही तो आए हो ना, यहाँ परम धाम से ही तो आत्मा ही आई है, यहाँ तो आई है, एक बार तो दोबारा भी तो आ सकती है ना, फिर समझते मोक्ष मिल जाए तो वापस क्यों आए? हम कहते नहीं, ये संसार तो बड़ा सुख रूप है, क्यों नहीं हम आए? आगे के विषयों में हम आपको और अधिक इसका स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन प्रश्न है कि हम क्यों आए इस संसार में? पहली बात तो आए ही क्यों? कई पूछते हैं भगवान ने क्यों भेजा हमें, तो तीन लक्ष्य देकर के हमें भेजा है इस दुनिया में, हम ऐसे ही नहीं आए हैं। आप लोग भी यहाँ आए हो ऐसे नहीं आए हो, लक्ष्य लेकर के आए हो कि शिविर करना है, घूमना भी है, शिविर भी करना है, यहाँ का आनंद भी लेना है, तो आपको अच्छा लगेगा, मान लो लग रहा है तो दोबारा आना चाहेंगे? हाँ आना चाहेंगे, क्यों आना चाहेंगे? हो गया ना एक बार, लेकिन आप कहेंगे नहीं अच्छा लग रहा है, दोबारा भी हम ज़रूर आएंगे, बहन जी बुलाना हमें दोबारा भी, यही कह कर के जाते हैं तो अच्छा लगा ना। तो ये संसार भी तो सुख रूप है। तो पहले तो प्रश्न कि आए क्यों हम? तीन लक्ष्य लेकर के संसार में हम आत्माएं आती है, कहेंगे ना भगवान ने भेजा, तो भगवान ने कोई दुख देने लिए थोड़ी हमें भेजा इस दुनिया में, सुख पाने के लिए भेजा है। तो पहला लक्ष्य क्या था इस संसार में आने का? इस सृष्टि मंच पर एक्टर की तरह, एक अभिनेता की तरह पात्र बजाना, क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने का संस्कार निहित है। अब वो कर्म करने का संस्कार जो निहित है, वो कर्म तो सृष्टि मंच पर ही होगा ना। कर्म करने की कला हर आत्मा के अंदर है, पर वो कला प्रदर्शित करने के लिए तो मंच चाहिए, हमारे पास कई छोटे छोटे बच्चे आते, बहन जी दीदी मुझे डांस करना है, मुझे गीत गाना है, मुझे ये करना है। हम कितना मना कर, नहीं मुझे एक डांस करना है, क्योंकि कला है ना, तो कला प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो आत्मा के अंदर भी ये कला है कर्म करने की, तो मंच चाहिए ना। आज एक बहुत बड़ा कलाकार हो, मान लो आर्टिस्ट हो, अब उसको आर्टिस्ट बहुत है लेकिन उसके पास साधन ना हो, पेंट ब्रश चाहिए, पेंट्स चाहिए, कैनवस चाहिए, ये सब चाहिए ना। वो मिले तब तो वो अपनी कला प्रदर्शित करे। तो आत्मा के अंदर जो कर्म करने की कला है वो साकार मंच पर ही प्रदर्शित हो सकती है। शरीर जब आत्मा को मिले तभी कर्म कर सके। फिर दूसरा लक्ष्य क्या था इस संसार में आने का, वो कला प्रदर्शित करते समय आत्मा के अंदर जो निहित गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये गुण आत्मा कर्म द्वारा प्रदर्शित करे। कर्म करे ये पहला लक्ष्य, फिर ये गुण कर्म द्वारा प्रदर्शित करे। जो कला प्रदर्शित करते हैं उसमें लक्ष्य क्या होता है, सबको खुशी मिले, सबको कुछ ज्ञान वर्धक हो, उससे कुछ प्रेरणा मिले, कुछ जीवन में उन्नति हो, ये लक्ष्य होता है ना। केवल कला प्रदर्शन ही सब कुछ नहीं है। तो कर्म करने के पीछे लक्ष्य क्या है कि उस कर्म में सुख बांट सके, शक्ति बांट सके, प्रेम बांट सके। तो मन वचन कर्म से ये सद्गुण औरों तक पहुंचाना, ये वास्तव में कर्म करने के पीछे लक्ष्य है। आप किसी को किसके जन्मदिन पर गिफ्ट देते हो, मुबारकबाद देंगे लेकिन कहेंगे हाथ खाली कैसे दे, जन्मदिन है तो कोई गिफ्ट लेकर के जाते हो, सौगात। तो सौगात देते समय आप उनको कहेंगे मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके जन्मदिन की या शादी की एनिवर्सरी है, कुछ भी है, अच्छा मौका है, शुभ मौका है, आप सौगात देंगे। आप हाथ खाली भी जा सकते हो, ऐसे ही मुबारक दे सकते हो, उसने आपसे सौगात मांगी तो नहीं। लेकिन ये केवल सौगात बड़ी चीज़ नहीं है, कोई छोटी सौगात लाएगा, कोई बड़ी सौगात लाएगा, पर उसके पीछे प्रदर्शन किस बात का है, आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका सम्मान। तो एक छोटी सी गिफ्ट उनको देंगे, तो वो स्थूल रूप में गिफ्ट देना, परंतु उसके पीछे भाव है प्रेम, सम्मान, सत्कार, ये प्रदर्शित करना। तो कर्म में ये गुण प्रदर्शित करें, ये लक्ष्य है, इसलिए संसार में आए। और तीसरा लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था, उस परमात्मा का नाम रोशन करना जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। क्यों भेजा? आज विदेश में भारत की सरकार स्टूडेंट्स को भेजती है, स्कॉलरशिप दे करके भेजती है। क्यों भेजती है? कि देश का नाम रोशन करें, है ना। कंपनी भेजती है कि जाओ जाके पढ़ाई करो, पैसा दे करके विदेश भेजती है ताकि कंपनी का नाम रोशन करे, भेजती है ना, करती है ना। तो भगवान ने क्यों भेजा इस दुनिया में? खाओ पियो मौज करो इसीलिए, घूमो फिरो बस इसीलिए, या धन इकट्ठा करो, परिग्रह करो इसीलिए? अरे जीवन का तो अगले पल का भी भरोसा नहीं, लेकिन बटोरते इतना है जैसे 100 साल पता नहीं कितना जीना है, एक अगले पल का भी भरोसा नहीं। तो ये क्या लक्ष्य ही बदल गया है इंसान का। कहा जाता है देवता, मनुष्य और असुर है तो तीनों ही इंसान, लेकिन देवता, मनुष्य और असुर की वृत्ति में अंतर पड़ने के कारण कोई देवता कहलाता, कोई मनुष्य कहलाता, कोई असुर कहलाता है। असुर की वृत्ति क्या होगी? मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, तेरे पास जो है वो भी मैं रखने नहीं दूंगा। फिर छल, कपट, निंदा, चुगली, बेईमानी, हेरा फेरी, झूठ आदि आदि, झूठ फरेब, न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं दूसरे की चीज़ जब्त करने के लिए। इसीलिए उसको असुर कहा जाता है। जो कहेगा मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, या तेरा सो मेरा, मेरे हाथ न लगा, देखना मेरी चीज़ को हाथ लगाया तो देखना तेरी भी मैं ले लूँगा, है ना। बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं तो कहेंगे ये क्या करे, तो जैसे राक्षस है। तो राक्षसी वृत्ति ऐसी होगी, साधारण मानवीय वृत्ति क्या होगी, ठीक है तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। वो बच्चा कहेगा छी छी तेरा, छी छी मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना नहीं दूंगा। अपनी चीज़ को पकड़ के रखेगा, दूसरे की चीज़ फेंक देगा, नहीं चाहिए जाओ। तो तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, बड़े भी ऐसे करते। अच्छा पार्टीशन बना देंगे, ये तेरा हिस्सा ये मेरा हिस्सा, तू मेरे हिस्से में नहीं आना, मैं तेरे हिस्से में नहीं आऊँगा, ठीक है ठीक है, झगड़ा पूरा हुआ, बात नहीं करना मेरे से, बात भले मेरे पास नहीं आना, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए। ये साधारण मनुष्यता है। पर देवत्व क्या है, देवत्व क्या है, न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब ईश्वर का है। ईश्वर का है या मेरा तेरा है। आरती में क्या गाते हैं हम सब, जब आरती करते क्या कहते हैं, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आरती के समय भगवान ये सब तेरा, और बाकी समय सब मेरा, तेरा भी मेरा। फिर वही लड़ना चालू कर देंगे, ये मेरा क्यों उठाया, ये मेरा क्यों उठाया, बाहर गए चप्पल ही गुम, पता नहीं कौन चोरी करके चला गया। आरती तो उसने भी की होगी ना, जो सब कुछ तेरा। या आरती करते समय चप्पल पर ध्यान जाता है, पता नहीं कोई चोरी न कर ले, और कहते भगवान ये सब तेरा। तो योगी की स्थिति यही होती है, वो मेरा नहीं है। पर उसके लिए आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अपने घर का ज्ञान, और कैसे एक न्यारी स्थिति की आवश्यकता है। तो राजयोग में हम कई पड़ाव से गुजरते हैं। ये नहीं कि केवल हम आपको मंत्र दे देंगे, आपको कहेंगे बस आप इसका जाप करते रहना, 1,00,000 जाप सारे दिन में करते रहना, कई ऐसे करते हैं। अब एक जाप मिला हमें ओम नमो शिवाय का, मान लो, और मुझे कहा गया कि 1,00,000 ओम नमो शिवाय का जाप करना। अब मैं जाप शुरू करूंगी, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, फिर एक इतनी एक ही समय तो 1,00,000 नहीं होगा, एक समय पर चलो 1,000 जाप किया, फिर दूसरी बार 2,000, 3,000, फिर गिनती करती रहूँगी, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 50,000 हो गया। तो योग किसके साथ हुआ, गिनती से हुआ या शिव से हुआ, किससे हुआ, किससे हुआ, गिनती से हुआ। 50,000 हुआ, अभी और 50,000 करना है, क्योंकि 100,000 होता है 1,00,000 में, बहुत टाइम लगता है, कोई सहज तो नहीं है। तो 1,00,000 बनने में कितना समय देना तो पड़ता है ना ओम नमो शिवाय का जाप करने के लिए। तो अंत में गिनती हो जाएगी, 1,00,000 हुआ, हाँ अभी पूरा हुआ, पर शिव से तो योग लगा ही नहीं। ओम नमो शिवाय का अर्थ क्या है, मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूँ, ये है ओम नमो शिवाय। अब मैं शिव को नमस्कार करने वाला कौन हूँ मैं, ये पता ही नहीं है, ये देह अभिमान में है, तो ये ओम नमो शिवाय का जो जाप है वो सार्थक कैसे होगा। फिर जिस शिव को मैं नमस्कार कर रहा हूँ वो शिव कौन है, वो कहाँ है, क्या मेरा उनसे संबंध है, कैसे मैं उनसे मिल सकता हूँ, क्या मुझे प्राप्त करना है, कुछ पता नहीं है, तो ये मंत्र सार्थक कैसे होगा। चलो समय सफल हुआ, मुख पर जिबान पर और कोई बातें नहीं आएगी क्योंकि जाप कर रहे हैं, परंतु हाथ से माला भी फेर रही हैं तो आपकी अंगुली भी घिस रही है, चलो कोई बात नहीं, और आपके पाप कर्म नहीं हो रहा है उस समय। तो मुख पर जाप हो, हाथ में माला हो, आंखों के सामने भल मूर्ति हो, परंतु मन तो भटक सकता है। इसलिए कबीर ने बड़ा सुंदर दोहा दिया उसके लिए, क्या दिया, कर का मन का फेरत युग भया, पर फिरा न मन का फेर, मन का फेरा फिरा ही नहीं, कर माना हाथ के मन के तो बहुत फेरे, अब कर का मण का छोड़कर मन का मण का फेरो। तो मंत्र क्या है? मन का मण का फेरना। मन में वो चिंतन करके उस परमात्मा की लगन में मगन होना। तो राजयोग में कई पड़ाव आते हैं और उस पड़ाव का लक्ष्य है कि हमें वापस शुद्ध होकर के उस परमधाम में जाना है, क्योंकि अभी समय अनुसार वापस जाने का समय आ गया है, ये चक्र समाप्त हो रहा है, फिर नई सतयुगी दुनिया में भी हमें आना है। ये परमात्मा ने हमें लक्ष्य दिया है। तो उसके लिए हम कैसे आरंभ करते हैं? पहली अवस्था इस राजयोग के अंतर्गत आती है श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन। श्रेष्ठ विचार मन में लाने हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं परम धाम का वासी हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, जैसे अपने साथ बातें करना। कई बार हम देखते हैं बड़े लोगों को ना एक अपॉइंटमेंट डायरी होती है, अपनी अपॉइंटमेंट डायरी में वो लिखते रहते किससे मिलना है, इनसे मिलना है, आधे आधे घंटे का 15-15 मिनट की अपॉइंटमेंट डायरी उसका सेक्रेटरी रखता रहेगा, इनसे मिलना, अभी इनसे मिलना, अभी इनसे मिलना है। लेकिन कई ऐसी विडंबना है, या विडंबना ही कहें, कि उस अपॉइंटमेंट डायरी में कभी अपना नाम भी होता है कि अपने आप से भी मिलना है, औरों के नाम होते हैं, इनसे मिलना, इनसे मिलना, इनसे मिलना, और खुद से मिलना, अपने से बातें करने लिए टाइम है? कई कहते हैं हाँ अपने लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना, रात को सोते हैं तो अपने लिए टाइम है, खाना खाते अपने लिए टाइम है, टीवी देखते, अखबार पढ़ते हैं, गप्पे मारते हैं, अपने लिए टाइम है, टाइम पास करते हैं। लेकिन नहीं, वो अपने लिए टाइम नहीं है, वो अपने शरीर के लिए भले टाइम देते हैं, खेल कूद है, कुछ भी है, ये आप शरीर के लिए टाइम है, पर अपने लिए टाइम है ना अपनी आत्मा से बातें करना। मैं क्या चाहता हूँ, क्या मेरा जीवन का लक्ष्य है, मुझे क्या करना होगा? बुद्धि मन से बातें करे, मन बुद्धि से समझे कि आखिर मुझे करना क्या है, इंद्रियों को समझाए बुद्धि मन के द्वारा कि आखिर तुम्हें इस जीवन में करना क्या है। ये है अपने साथ बातें करना। मन बुद्धि संस्कार आत्मा की जो ये तीन शक्तियां हैं, इनकी आपस में बातचीत चले। फिर इंद्रियों को समझाए कि कैसे इंद्रियों को वश में रखना है। ये है अपने साथ बातें करना। तो राजयोग में हाँ आत्मा अपने साथ बातें करती है। पहले मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना। तो ये जो ज्ञान मिला उस ज्ञान के आधार से अपने साथ बातें करना। अब इस अपने साथ वार्तालाप में बहुत विघ्न भी आएंगे, क्योंकि मन इतना चंचल है कि वो देह से संबंधित बातें ही सोचता रहेगा। अभी अभी आप कहेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम का वासी हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ये मन में सोच किया बुद्धि के द्वारा, उसी वक्त देह अभिमान के वश मन हो गया, गुस्सा आ जाएगा, नफरत पैदा होगी, ईर्ष्या आएगी, तो ये भी विकार आ जाएंगे मन में उसी समय। उसी समय अभी अभी इतना अच्छा संकल्प, अभी अभी ये अशुद्ध विचार आएगा, लेकिन घबराना नहीं चाहिए उस वक्त। क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हम सोचते हैं तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जैसे कोई गाड़ी चलाना सीखता है ना, तो पहले जब गाड़ी नई उसके हाथ में आती है चलाने के लिए, जब भले ज्ञान है कैसे चलाना है, गियर क्या है, क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, सब ज्ञान है, लेकिन उसको यूज़ करते समय प्रैक्टिस चाहिए ना। तो हो सकता है कि कहीं एक्सेलरेटर दबा दे ब्रेक की जगह, तो इसीलिए क्या करते हैं पहले गियर में उसको चलाना सिखाते हैं, भारी गियर होता है तो पहले गियर में तो बड़ी तकलीफ होती है ना, गाड़ी को पकड़ना भी पड़ता है और पहला गियर है, भारी होती है गाड़ी, लेकिन कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है तो सीधा पहले से दूसरे गियर में ले जाते हैं, तो दूसरे गियर में थोड़ी हल्की होती है गाड़ी, फिर और अभ्यास पड़ता है तो फिर तीसरे गियर में चढ़ाई चढ़ते तो तीसरे गियर में चढ़ना पड़ता है, क्योंकि बार बार ब्रेक भी लगानी पड़ती है। फिर सीधा रास्ता है तो चौथा टॉप गियर, फिफ्थ गियर, आजकल तो फिफ्थ गियर भी है, चलते जाओ हवा में उड़ते चलो, कोई रुकावट नहीं है। तो राजयोग के अंदर मानो पहला जो कदम है श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन, ये फर्स्ट गियर की तरह है। अभी अभी अशुद्ध चिंतन भी आएगा, फिर शुद्ध चिंतन आएगा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर कहेंगे अरे ये गुस्सा क्यों आया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन घबराओ मत, मन को अभ्यास देना है, ये रास्ता सही है, रास्ता गलत नहीं है। कई कहते हैं मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ नहीं, मैं कैसे कहूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अब ये भी वास्तव में समझ मिली है कि असली रूप में तो मैं शुद्ध ही हूँ ना। अब ये वस्त्र मैला हुआ तो धोना है ना, मालूम है असल रूप में तो ये सफ़ेद शुद्ध वस्त्र है, क्यों नहीं धुलेगा। आत्मा भी अपने मूल स्वभाव में शुद्ध है, तो जब हम चिंतन करते हैं मैं शुद्ध हूँ तो ऑटोमेटिकली शुद्धिकरण का अनुभव होता है। जैसे आप सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप सोचेंगे मैं तो अशुद्ध हूँ, मैं तो पतित हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो अशांत हूँ, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी, वो आपकी सोच में ही है, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वभाव में तो शुद्ध है। तो चिंतन से ही शुद्धिकरण होगा। अगर आप कहें कि मैं तो शुद्ध हूँ नहीं, तो कैसे बनेंगे शुद्ध, कौन से साबुन को साबुन लगाने से शुद्ध बनेंगे। ये चिंतन का ही साबुन है जो बुद्धि के द्वारा मन को देना है, जिससे शुद्धिकरण होगा। तो राजयोग में जो पहली पौड़ी है, पहला जो कदम है वो है श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन, जिसमें अशुद्ध भी मिक्स हो जाएगा। जैसे दिखाते ना सागर मंथन किया असुरों और देवताओं ने, तो असुर तो देवताओं के पक्ष के तो बहुत धातु निकले, दिखाते लक्ष्मी निकली, अमृत निकला, घोड़ा निकला, हाथी निकले, ये सब देवताओं के पक्ष के निकले। फिर क्या निकला, जहर भी निकला, है ना। अब जहर निकला तो देवताएं भयभीत हो गए कि ये क्या, जहर तो हमें नाश कर देगा। फिर उस समय शिव की आराधना की तो फिर दिखाते शंकर, दिखाते हैं कि शंकर ने वो सारा जहर पी लिया। अब वास्तव में शंकर कोई उस रूप से नहीं है कैसे जहर पी लेगा, लेकिन ये आत्मा की तपस्या है, परमात्मा के साथ जब योग है और शिव बाबा को हम ये सारी बुराइयाँ दे देते हैं तो शिव बाबा सब स्वाहा कर लेता है। इसलिए आप देखेंगे शिव के ऊपर जो भेंट चढ़ती है ना, वो क्या भेंट चढ़ती है, अक के फूल, धतूरा, भांग, पता नहीं क्या क्या, ये सब बेकार चीज़ें ही लगाते हैं, हलवा, लड्डू, पेड़े, ये सब नहीं शिव के ऊपर चढ़ते हैं। शिव के ऊपर कड़वी चीज़ें ही चढ़ाते हैं। चलो अभिषेक जब शिव का करते हैं तो हो सकता है शहद भी डालेंगे तो दूध भी डालेंगे, लेकिन जो जो हम फूल देंगे चढ़ाते हैं कौन सा, अक के फूल, जंगली फूल, कड़वे फूल, धतूरा आदि आदि जो कड़वी चीज़ें, शिव बाबा सब स्वाहा कर लेता है। फिर उस समय ये सोचो मैं तो शिव बाबा की संतान हूँ, उस परम पवित्र परमात्मा की संतान हूँ, एकदम सब अशुद्धिकरण निकल जाएगा, आत्मा शुद्ध हो गई। तो पहली अवस्था में परमात्मा हमें कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, अपने साथ बातें करके शुद्धिकरण का अनुभव करो। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा कदम क्या है, दूसरा कदम है, दूसरी अवस्था है परमात्मा से बातें करना, क्योंकि शुद्धिकरण हो गया तो मन में शिव बाबा को हमने स्थान दे दिया, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, परम धाम का वासी हूँ। शिव बाबा अभी हम आपके साथ चल रहे हैं इस यात्रा पर, तो आत्मा परमात्मा से बातें करें, लेकिन आपको जैसे बताया ना, स्वार्थ नहीं हो इन बातों में, कुछ भी चीज़ मांगनी नहीं है भगवान से। कई कहते हैं कि इच्छा मैं भगवान से तो कुछ मांगता नहीं हूँ, लेकिन कम से कम शांति तो मांगो ना, शक्ति तो मांगो ना। भगवान कहते वो भी मांगने की ज़रूरत नहीं। हम लोग प्रार्थना में कहते इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो शक्ति हम मांगते हैं, शक्ति कोई चीज़ थोड़ी है जो हमने मांगी और मिल गई। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तो डॉक्टर क्या करेगा, वो आपको विटामिन की गोलियां देगा, आयरन टैबलेट्स देगा, भाई खून की कमी है चलो सलाइन लगा देगा, ग्लूकोस देगा, जो कुछ भी है, तो लगेगा कि हाँ शक्ति मिली। तो ये संकल्पों के द्वारा ही तो शक्ति लेनी है। आत्मा संकल्पों से ही ऊंच बनेगी, संकल्पों से ही नीचे आती है, क्योंकि बीज तो वही है हमारे जीवन का। तो अगर मैं ये संकल्प करती हूँ मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान शक्ति स्वरूप हूँ, तो शक्ति अपने आप आती है। तो शिव बाबा से हम ये शक्ति कैसे लेंगे, ये नहीं कहेंगे शिव बाबा शक्ति दो, शिव बाबा शांति दो, कैसे देगा शांति, कोई चीज़ थोड़ी है जो हमने मांगी और हमें मिली। अच्छा मिली तो कैसे पता चलेगा मिली, कोई आँखों से देखने की चीज़ थोड़ी है, ये तो अनुभव करने की चीज़ है। तो मैं हूँ वो शक्ति स्वरूप, तो ये नहीं कहूँगी शिव बाबा शांति दो, लेकिन भाषा बदल जाएगी, क्या शिव बाबा आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांति स्वरूप हूँ, मेरा पिता शांति का सागर है, तो मैं उसकी संतान कोई अशांति रूप थोड़ी हूँ। अगर किसी का पिता राजा है तो बेटा क्या होगा, फकीर होगा क्या? कोई बेटा राजा का अपने पिता को कहे पिता आप तो राजा हो पर मैं तो फकीर हूँ, ऐसे ये तो पिता का नाम बदनाम करना हुआ। पिता कहेगा ये क्या कहते हो, तुम तो मेरी नाक काट रहे हो। पिता जैसा ही होना चाहिए ना बेटा भी। तो हम भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा इतना ऊंच और हम अपने आप को इतना नीच मान रहे हैं, और हम समझते हैं ये हम बड़ी नम्रता दिखा रहे हैं भगवान के आगे। मैं मूर्ख खल कामी पापी, यही अपने लिए कहते रहते हैं। अब शिव बाबा कहते ये भाषा बंद करो, जो शिव बाबा के गुण हैं वो मेरे भी गुण हैं। तो ये नहीं कहूँगी शिव बाबा शांति दो, मैं तो बहुत अशांत हूँ। नहीं, शिव बाबा आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। और जैसे ही कहा शांत स्वरूप हूँ, आत्मा शांत बन जाती है, अनुभव होता शांति तो मेरे पास ही है। तो दूसरी अवस्था है अंदर ही अंदर आत्मा परमात्मा से बातें करे, वस्तु भी नहीं मांगना, गुण भी नहीं मांगना। कई बार फिर क्या करते हैं, बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं ना, कोई भूल की बहुत कड़ी तो मन खाता है, फिर कहेंगे अच्छा मैं भगवान से माफ़ी तो मांगो, मैंने ये भूल की। तो शिव बाबा कहते हैं माफ़ी मांगने का अर्थ क्या होता है, माफ़ी मांगने का अर्थ इतना ही नहीं होता है अच्छा मैंने भूल की माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने का अर्थ ये होता है कि अच्छा भूल हुई माफ़ कर दो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा नहीं करूँगा। बच्चा कोई भूल करता है, मम्मी सॉरी, हाँ माँ भी कहेगी बेटा सॉरी बोलो, तो मम्मी को कहेगा सॉरी, लेकिन फिर दूसरा वाक्य क्या कहेगी, अच्छा दोबारा नहीं करना। ये नहीं कि बार बार सॉरी बोलता रहे और फिर भूल करता रहे, तो वो सुधरेगा कब। इसलिए सुधारना भी तो है ना, समझाना भी है और सुधारना भी है, माफ़ भी करना है। तो परमात्मा तो रहम दिल है, हम सच्चे दिल से अपनी कमी कमज़ोरी भगवान को बताते हैं और फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि ये भूल मैं दोबारा नहीं करूँगा, तो शक्ति का अनुभव क्यों नहीं होता है? हिम्मत रखी तो परमात्मा की मदद भी क्यों नहीं मिलती है? लेकिन बार बार भूले करो और बार बार क्षमा मांगो तो परमात्मा कहते हैं मैं भी धर्मराज हूँ, आखिर न्यायकारी तो हूँ ना। ये तो नहीं भूले करते रहो और मैं क्षमा करता रहूँगा, आखिर अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू तो करना ही पड़ेगा। इसलिए इस धोखे में भी मत आ जाओ कि हाँ भगवान से माफ़ी मांग ली ना, भगवान ने माफ़ कर दिया, जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा ही। पर माफ़ी मांगना माना प्रतिज्ञा करना कि ये भूल मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो भगवान से बातें करो, इंसान से बातें करनी आती है, ईश्वर से भी बातें करो। तो शिव बाबा हमें राजयोग में परमात्मा से कैसे बातें करो वो सिखाता है, और सब संबंध से बातें करो। परमात्मा हमारे माता पिता हैं, बच्चा बाप से कैसे बातें करता है, अधिकार भी रखता है और अपनी कमियां बताएगा भी और पिता उसको समझाएगा भी। तो शिव बाबा से भी हमें बहुत कुछ प्रेरणाएं मिलती है अगर हम सच्चे दिल से बाबा से बात करते। इसका बहुत विस्तार है, एक एक संबंध से कैसे हम शिव बाबा से बातें करते हैं और बाबा की मदद भी मिलती है। कई लोग कहते हैं हम भगवान से बातें तो करते हैं लेकिन भगवान का जवाब नहीं आता है। हम कहते हैं जवाब क्यों नहीं आता है, इसका कारण पता है क्यों नहीं आता है? कई कारण हो सकते हैं जवाब ना आने का। एक कारण ये कि कनेक्शन जुड़ा ही नहीं, आप टेलीफोन कर रहे हो अब उसको उस तक पहुंचा ही नहीं तो कैसे जवाब आएगा? आपकी बात भी वो नहीं सुन पा रहा है तो जवाब कैसे देगा? पहले आपकी बात सुने तब तो जवाब दे। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप ही बोले जा रहे हो तो उसको जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे हो। नहीं, कई बार ऐसे होता है, दूर का टेलीफोन होता है ना, तो मेरा काम अपना बहुत है, ये करना, अब उसको जवाब देने का मौका भी तो दो ना, वन वे ट्रैफिक है, नहीं तो आवाज़ कट जाएगा, इसीलिए वो सुनता रहता है कब बोले। आप चुप करो तो वो बोले ना। तो हम चुप ही नहीं करते, बोले जा रहे हैं तो इसलिए जवाब हमको मिलता नहीं है, फिर वो बोल करके रख दिया, कट कर दिया, अब वो जवाब कब सुनेंगे? शांत भी तो होना चाहिए तब जवाब आएगा। और तीसरा कारण होता है जवाब न आने का, वो भी बहुत अनुभव है आप लोगों को, कि जो हम कहते हैं वो भगवान को पसंद नहीं है। कभी ये भी सोचा कि भगवान को पसंद क्या है और पसंद क्या नहीं है? कई बार पति पत्नी के बीच में डायलॉग होता है, अब पत्नी पति को बोलती जा रही और पति चुप, कुछ नहीं जवाब देगा। उसको पता है थोड़ा सा जवाब दूंगा तो झगड़ा चालू हो जाएगा, इसलिए जवाब ही नहीं देना। एक चुप सौ सुख। कई बार ऑपोजिट भी होता है, पति इतना बोल रहा है, पत्नी शांत गंभीर धीरज रख रही है, सहनशील है, कुछ जवाब नहीं देती, आखिर कब तक बोलता रहेगा वो? क्योंकि जवाब देने से वो आग में तेल की तरह काम करेगा, इसीलिए शांत रहना, झगड़ा नहीं करना है। तो भगवान भी जवाब नहीं देता क्योंकि जो हम बातें करते हैं भगवान से वो भगवान को पसंद नहीं है। स्वार्थी बन करके बातें करते हैं, कई बार स्वार्थी भी साथ साथ फिर भगवान को डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, हे भगवान देखना तो मेरा ये काम नहीं किया, देखना मैं क्या करता हूँ। भगवान को धमकाते हैं, जैसे कोई इंसान को धमकाते हैं ना, धमकी देते हैं, देखना मैं क्या करूँगा अगर ये तुमने नहीं किया तो भगवान से भी ऐसे ही बातें करते हैं कई लोग। अब ये तो इतना हक तो न लगाएं, वो तो अथॉरिटी है। कई बार हम अपने लिए क्षमा नहीं मांगते हैं या अपने लिए कोई सज़ा नहीं मांगते, दूसरे के लिए सज़ा मांगते हैं, हे भगवान उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है तुम उसका सत्यानाश कर देना, ऑर्डर करते हैं भगवान को। करते हैं कभी कभी आप लोग? करते होंगे ज़रूर, ऑर्डर करते हैं, ये भगवान उसके साथ ऐसा व्यवहार करना, क्योंकि मैं नहीं कर सकता तुम ही करना। लेकिन नहीं, हर एक का कर्म उसके साथ है, जो करेगा वो भरेगा। मेरा संबंध ईश्वर के साथ कैसा होना चाहिए? वो प्रेम भरा संबंध, जिसमें अधिकार भी हो, प्रेम भी हो, त्याग भी हो। हम अधिकार तो बहुत रखते हैं, भगवान ये दो वो दो, और हमारे अंदर का त्याग तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद का तो नाम भी नहीं है। इतना जो कुछ हमें मिला है भगवान ने तो दिया है। किसने दिया है ये सब? ईश्वर ने दिया है। तो जिसने दिया है उसका धन्यवाद भी करते हैं कि नहीं, या मांगते ही रहते हैं? जब मिल गया वो तो मेरा हो गया ना, धन्यवाद क्या करना। इसीलिए ये सारी स्वार्थ की बातें, अज्ञान की बातें भगवान से मत करो, ईश्वर सुनेगा नहीं। तो क्या बातें करो, पहले तो नंबर तो मिलाओ, कौन सा नंबर से आप भगवान से बातें करेंगे। देखो लोकल नंबर होते हैं ना, तो कई होते हैं, पर एसटीडी करना होता है तो क्या करते हैं? एसटीडी करने के लिए क्या करना पड़ता है? ज़ीरो घुमाना पड़ता है। तो ज़ीरो घुमाते ही लोकल लाइनें कट जाएगी। फिर जिस शहर का नंबर घुमाना है उसका कोड नंबर होता है, दिल्ली है तो 11, बम्बई है तो 22, है ना, आदि आदि। बनारस का अपना होगा, इंदौर का अपना होगा, कोड नंबर होते हैं। दूसरे शहर से उस शहर में करना है तो अब तो ज़ीरो घुमाना होता है। फिर अगर इंटरनेशनल कॉल करना है तो क्या करते हैं? ISD, तो क्या करते हैं? दूसरा ज़ीरो भी घुमाते हैं, दो ज़ीरो घुमाते हैं, क्योंकि दो ज़ीरो करने से दूसरे ज़ीरो से जो भारत की लाइनें हैं वो कट जाती है। फिर इंटरनेशनल नंबर का जो कोड नंबर अमेरिका करना है तो 001 है नंबर अमेरिका का। फिर उसके बाद उस शहर का नंबर, फिर वो लोकल नंबर, बहुत लंबा नंबर होता है। अब परम धाम फ़ोन करना है तो क्या करेंगे? इस दुनिया से ही परे, क्योंकि परम धाम पहुँचना है ना, तो कौन सा नंबर घुमाएंगे? हम कहते तीसरा ज़ीरो भी घुमाओ। तीसरा ज़ीरो घुमाओ तो परम धाम से लाइन लग जाएगी। अब वो टेलीफोन पर नहीं जाके करना है। लेकिन तीन ज़ीरो का मतलब क्या है? शिव बाबा हमें कहते तीन बिंदी लगाओ तब मन परमात्मा में लगेगा। पहली बिंदी क्या है? मैं आत्मा बिंदु, आत्मा हूँ, ज़ीरो बिंदु हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। तो जैसे ही मैंने कहा मैं आत्मा बिंदु हूँ, तो जो भी शरीर के साथ संबंधित बातें हैं, पदार्थ है, वस्तु है, बातें जो कुछ भी है वो सब ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, इस संसार की तो कोई वस्तु न लाई हूँ न ले जाऊँगी, केवल कर्मों का हिसाब किताब ही लेकर के आई हूँ। भाग्य ही आत्मा अपने साथ लाई हूँ, वस्तु तो लाई नहीं हूँ। तो वस्तु से एक सेकंड में मन उपराम हो जाएगा, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं तो परम धाम का वासी हूँ, मैं तो शिव बाबा की संतान हूँ। ये जैसे ज़ीरो घुमाया तो और जो बातें इस संसार की है वो मन से अलग हो जाएगी, दूर हो जाएगी। फिर कई बार क्या होता है, वस्तु तो याद नहीं आती लेकिन व्यक्ति याद आते हैं। हाय मेरा बेटा, मेरा फलाना, मेरा फलाना। अब हमको शिव बाबा कहते हैं सब संबंध मेरे से जोड़ो, केवल कहो नहीं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, पर सचमुच सब संबंध आत्मा के, परमात्मा के साथ हैं। शिव बाबा आप ही हमारे माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सतगुरु। अब ये दूसरा ज़ीरो घुमाया, शिव बाबा भी ज़ीरो है, तो जो देहधारी संबंध है वो भूल जाएंगे। एक से ही सर्व संबंध है मेरे, वही मेरा सर्वस्व है। फिर तीसरा ज़ीरो माना, ये संसार एक ड्रामा है, एक खेल है, एक नाटक है। कई बार हम घटनाओं के लिए पूछते हैं, सोचते हैं ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये कैसे, ये कौन, ये कब, ये कहाँ। शिव बाबा कहते ये प्रश्न करने की भी ज़रूरत नहीं। जो हुआ, गीता का सार क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तो क्यों, क्या क्यों, ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये क्या हुआ, नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, तो मन शांत। ये तीसरा जीरो घुमाया, ड्रामा देखा इस संसार रूपी नाटक को। तो नाटक में तो कई चीजें होंगी, पर नाटक है ना, नाटक में दुखी थोड़ी होना होता है। नाटक देखने जाते हैं, कोई एक्ट्रेस रो रही है मंच पर, तो हम भी रोने लगते हैं क्या थिएटर में बैठ करके उसके साथ? नहीं, वो तो नाटक कर रही है, वो तो नकली है, वो ग्लिसरीन लगाया हुआ है, लगता है जैसे आंसू आ गए हैं, सब नकली है। तो ये ड्रामा बना है ना, खेल है ये, इसको खेल देखो। क्या क्यों प्रश्न क्यों, दुख क्यों? न दुख हो, न आश्चर्य हो, न चिंता हो, न डर हो, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, जो है उसमें कोई कल्याण है, अच्छा है। दुख की तो बात ही नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं, खत्म होता। जो मेरे पास है कल किसी और का था, आज मेरे पास है कल किसी और का होगा, इसलिए दुख भी क्या होगा, हुआ जो गया। तो यानी ये बहुत ऊंचा ज्ञान को अगर हमने समझ लिया तो मन से दुख तो खत्म ही हो जाएगा, और शिव बाबा को साथी बनाकर हम इस यात्रा में आगे बढ़ें, उनसे ही बातें करें। तो दूसरी अवस्था है रूह रिहान, भगवान से बातें करो, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं, कुछ स्वार्थ की बात नहीं, इच्छाएं नहीं, लेकिन दिल की बातें, शिव बाबा से प्रीत की बातें। ये आत्मा परमात्मा के गुणों का गायन करते, अपने भाग्य का गायन करते आगे बढ़ो। फिर तीसरी अवस्था का अनुभव करते, जिसको कहते अव्यक्त अवस्था, जिसमें व्यक्त की सारी बातें खत्म, लौकिक दुनिया की सारी बातें खत्म, बस आत्मा परमात्मा का एक सुंदर मिलन, आत्मा परमात्मा के प्रेम में खो जाती है, क्योंकि उनके गुणों का चिंतन करते करते वो सत्यम शिवम सुंदरम की साथ संबंध जोड़ते उसी में खो जाती है। ये बड़ा प्यारा अनुभव है। इस अनुभव में हम महसूस करते हैं ये अपनापन तो कुछ है ही नहीं, पर शिव बाबा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, वो बिंदु में सिंधु की शक्ति और मैं आत्मा उसमें खो गई, अपना अस्तित्व तो याद ही नहीं है उसमें, मेरा ये नाम रूप धर्म जाति भाषा कुछ नहीं, मैं आत्मा शिव बाबा में खो गई। इसको कहते अव्यक्त अवस्था, व्यक्त के भाव खत्म, और धीरे धीरे इस अवस्था का चरम स्वरूप है वो चौथी अवस्था, जिसको कहते बीज रूप की अवस्था। बीज के अंदर पूरे वृक्ष का सार होता है, तो शिव बाबा की सारी शक्ति वो मुझ आत्मा को अपने अंदर अनुभव होने लगेगी। जैसे सूरज की किरणें कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू फोकस करते हैं, तो फोकल पॉइंट पर सूरज का पूरा प्रतिबिंब आ जाता है, इतना विशाल सूरज पर उसका प्रतिबिंब इतना छोटा एक कागज़ पर हम बना सकते हैं, और वो इतना शक्तिशाली प्रतिबिंब होता है जो कागज़ को जला डालता है। कैसे जलाया? क्योंकि किरणों को केंद्रित किया। तो परमात्मा के जितने भी गुण हैं उनका चिंतन करते करते जैसे आत्मा उनमें खो गई, एकाग्र हो गई, उस एकाग्रता की शक्ति से परमात्मा के सारे गुण मुझ आत्मा को अपने अंदर अनुभव होते हैं। ये बहुत सुंदर स्थिति है, और इसी स्थिति को लोगों ने क्या शब्द दे दिया, आत्मा परमात्मा बन जाती है। आत्मा परमात्मा बन नहीं सकती, जैसे आपको बताया परमात्मा डिग्री या स्टेटस नहीं है, वो तो सदा ही आपका परम पिता है, लेकिन परमात्मा के सारे गुण आत्मा अपने संपन्न स्वरूप संपूर्ण स्वरूप में अनुभव कर लेती है। और वो अनुभूति अगर एक सेकंड के लिए भी रही ना, एक सेकंड, जैसे किसी गेंद को हम शक्ति से ऊपर फेंकते हैं, तो जितनी शक्ति से ऊपर फेंका उतनी शक्ति से वो ऊपर गया, और ऊपर जा कर के वो कुछ देर के लिए वहीं खड़ा होगा, एक सेकंड ही सही, जितनी शक्ति आजमाई, फिर उसके बाद वापस आएगा ज़रूर, आएगा, वापस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण है तो वापस आएगा। लेकिन एक सेकंड के लिए उस टॉप स्थिति तक पहुंचेगा, तो आत्मा भी उस टॉप स्थिति तक पहुंचेगी एक सेकंड के लिए ही सही, और महसूस होगा कि मैं आत्मा कितनी शुद्ध हूँ, उस पिता के समान हूँ, सारे गुण परमात्मा के मुझ आत्मा में आ गए। अब ये जो एक सेकंड की स्थिति है, उसे अनेक जन्मों के पाप भस्म होते हैं, आत्मा का शुद्धिकरण होता है, और उसके बाद अनुभव होता है कि जैसे मेरी दृष्टि बदल गई, वृत्ति बदल गई, मेरी भावना बदल गई, मेरी वाणी बदल गई, मेरे कर्म बदल गए, मेरा व्यवहार बदल गया, सब बदल जाएगा, क्योंकि शुद्धिकरण हुआ ना, आग में चीज पड़ी, परिवर्तन आ गया, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। अनुभव करके देखो, बहुत सुंदर अनुभव होंगे, लेकिन समय जरूर लगेगा, अभ्यास की आवश्यकता है, देह अभिमान को छोड़ने की आवश्यकता है, परमात्मा से सर्व संबंध छोड़ने जोड़ने की आवश्यकता है, आत्मिक स्थिति का अनुभव करने की आवश्यकता है। तो चलिए अब इसका अभ्यास करेंगे और देखेंगे कहाँ तक पहुँचे। परमात्मा को अपना साथी बनाइए, और वापस मुझे अपने धाम पहुँचना है, इतना शुद्धिकरण का मुझे अनुभव हो, तब आत्मा सहज वापस अपने घर जा सकेगी, और फिर जीवन मुक्ति के धाम में भी आना है, उस सत्युगी दुनिया में भी आना है, तो आत्मा मानव देव रूप में बन जाए, वो आगे का विषय है, जो फिर आगे आपको बताएंगे। अभी इतना ही कि मैं आत्मा परमात्मा से मिलन मनाकर अपने धाम में पहुंच जाऊं, उस शुद्ध स्वरूप में। तो चलिए सीधा बैठेंगे। ये लाल प्रकाश हमें संकेत देता है कि इस दुनिया के विचारों को स्टॉप लगाइए, ब्रेक दीजिए या डाइवर्ट कीजिए परमधाम की ओर, उस बेहद दुनिया की ओर जो आत्माओं का लोक है। मैं आत्मा इस साकारी दुनिया से दूर शांति धाम की वासी हूँ। तो पहला जीरो लगाइए, मैं आत्मा हूँ। दूसरा जीरो लगाइए, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। तीसरा जीरो लगाइए, ये संसार एक ड्रामा है, एक खेल है। और फिर एक, सर्व संबंध एक के साथ, ये परमात्मा का नंबर है। तो देखिए कैसे संबंध जुड़ जाएगा, एक पिता परमात्मा की ही याद रहेगी, उसमें ही मन लग जाएगा, अर्थात आत्मा लगन में मगन हो सकेगी। अगर आपके हाथ में कुछ है नीचे रख दीजिए, कोई भी वस्तु को पकड़े मत रखिए, छोड़ो तो छूटो, बिल्कुल हल्के होना है, आंखें बल खुली रहे। आप एक बहुत सुंदर यात्रा पर हो, परमात्मा आपके साथी हैं, आत्मा को नशा चढ़े, कहा जाता जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ये माया के तूफान अगर आते भी हैं हमको रोक नहीं सकते, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। तो उस साथी को साथ रख कर के इस यात्रा में चलो, पहले अंदर की यात्रा, फिर ऊपर की यात्रा, फिर बाहर की यात्रा, शिव बाबा को देखते हैं मन की आँख से। तो भीतर जाएं, अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? मन आत्मचिंतन करे, मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा दिव्य ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, भ्रकुटी के मध्य विराजमान चैतन्य शक्ति हूं, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, ये शरीर एक वस्त्र के समान है जिसे धारण कर मैं आत्मा सृष्टि मंच पर अभिनय कर रही हूं। अब इस देह रूपी वस्त्र से मुझे न्यारा बन उड़कर वतन में जाना है, अपने धाम में शिव बाबा के पास। पांच तत्वों से पार अखंड ज्योति का महतत्व है, जहां मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में निवास करती हूं। मन और बुद्धि से पहुंच जाए, एक बेहद दुनिया में जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है, बेहद शांति है, असीम शक्ति है, जहां मैं आत्मा प्रकृति के सर्व बंधनों से मुक्त हूं, मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र होकर अपने मूल स्वभाव में स्थित हूं, शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, पहचानो अपने मूल स्वरूप को। तीसरे नेत्र से देखो अपने मूल वतन को। और बुद्धि के द्वारा अनुभव करो अपने मूल स्वभाव को कि मैं कौन कहां हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं। ज्ञान के नेत्र से परमात्मा को देखो। जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, शिव पिता सर्व गुणों के सागर हैं, वो शांति के सागर, और मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ। प्यारे शिव पिता, मुझ आत्मा के सर्व संबंध आपके साथ ही है। आप ही मेरे परम पिता हो। आप शांति के सागर हो। मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, आत्मा महसूस करे कि शांति की शक्ति की किरणें शिव बाबा से मुझे प्राप्त हो रही है। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव का अनुभव कर रही हूँ। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़कर मैं आत्मा धन्य हो गई। ये कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है। मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है। मैं आत्मा अत्यंत हल्की हूँ। शिव बाबा आप सर्वशक्तिमान हो, सर्व गुणों के दाता हो, सर्व शक्तियों के स्रोत हो, आप सत्यम शिवम सुंदरम हो। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाऊं। अब इसी शक्ति को आत्मा स्वयं में भरपूर कर दे। खो जाए, जैसे बूंद सागर में समा जाती है। और इसी शक्ति को स्वयं में भरपूर कर फिर वापस लौटे साकारी दुनिया में, आवास की दुनिया में, प्राकृतिक शरीर में, इस विनाशी काया में। पर मैं अपने मूल स्वरूप से दूर नहीं, उसी निजी स्वभाव में स्थित रहकर कर्म करें तो कर्मों की भी कुशलता होगी। योग कर्मेषु कौशलम्, कर्मों की कुशलता के द्वारा हम सफलता प्राप्त करते जाएंगे। यही जीवन की सफलता है, यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन का रहस्य है। ओम शांति शांति शांति।